Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, मेहनत और डिटर्मिनेशन ये दोनों ही अपने आप में सफलता की चाबी है। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप महसूस करेंगे कि आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मोहित गुप्ता जी और मोनिका जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू।
नमस्कार। ओम शांति।
डॉक्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से ग्रेड्स इम्पॉर्टेंट है जिंदगी में, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस बात का है कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। आज हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेशन का भी एक रूप बन गया है। ऐसे में आपका क्या कहना है?
देखिए, सफलता के अलग अलग मापदंड होते हैं और पेरेंट्स का जब भी अपने बच्चों के प्रति एक एक्सपेक्टेशन होता है या उनसे एक्सपेक्टेशन होता है कि वो फर्स्ट आएँ, अच्छे मार्क्स सिक्योर करें या और ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करें, तो उनके मन में दो बातें होती हैं। एक तो वो उनको चरम शिखर पर देखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सी देम एट द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, और दूसरा वो दूसरे बच्चे से उन्हें बेटर देखना चाहते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम और आप कोई भी दो व्यक्ति कंपेरेबल नहीं हो सकते। हर व्यक्ति की, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर यूथ का टैलेंट और जर्नी अलग अलग है, क्योंकि ये एक नेचुरल गिफ्ट हर बच्चे के अंदर होता है
जी।
तो अगर पेरेंट्स बच्चे की कैपेबिलिटी को समझते हुए, नंबर वन, नंबर टू, उसका मेंटल डायरेक्शन, मेंटल मेकअप किस प्रकार का है, उसकी इच्छा किस प्रोफेशन के अंदर ज़्यादा है, वो किस तरफ डाइवर्सिफाई अपने आप को करना चाहता है, ये अगर वो समझते हैं और उस तरफ उसको पहचानते हुए उसको दिशा निर्देश देते हैं, तो वो ज़्यादा एप्ट रहता है, ज़्यादा एक्यूरेट रहता है
जी।
क्योंकि ग्रेड्स जो हैं, ग्रेड्स तो फिर भी हम कहेंगे बेटर हैं, लेकिन मार्क सिस्टम जो होता है कि मेरे 90 आए, उसके 91 आए या उसका बेटर आया, पिछली बार मेरा बच्चा फर्स्ट आया, इस बार सेकेंड क्यों आया, थर्ड क्यों आया, ये एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। लॉन्ग जर्नी के अंदर ये चीज़ें हमारी सक्सेस को डिपेंड या डिटर्मिन नहीं करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अपने मापदंड को और अपने मेंटल मेकअप को बच्चों को भी परिवर्तित करना होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हमारी सोसाइटी के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको भी करना होगा
जी।
हम आपको, मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल से एग्जांपल अपनी लाइफ से ही देता हूँ कि मैं बचपन में जब एग्ज़ाम होता था, मैं घर पर आता था, एग्ज़ाम टाइम जिसे कहते हैं होते थे, तो मेरे फादर मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। अब ज़्यादातर देखा जाए कि उस टाइम पे मैथ्स पढ़ना है तो आपको भाई पूरा एक दिन पहले एग्ज़ाम है तो उसमें आपको पढ़ना है, कुछ खेलने वेलने नहीं जाना है। लेकिन मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो मैं घर आते ही अपना बैग पटकता था, उन्हें पता कि ये खेलने चला जाएगा, तो उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने कहा तुम्हें जाना है, इन्जॉय करके जाओ, खेलो, लेकिन जब वापस आओगे तो मैं 20 क्वेश्चंस बना के रखूँगा, उसका आंसर आपको करना है घंटे के अंदर। तो मैं कहता था ठीक है। तो मैं इन्जॉय करके 7 बजे 6 बजे खेल कर वापस आता था और मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। उसमें मिस्टेक्स होती थी, वो बैठ के मुझे गाइड करते थे, एंड कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो क्या हुआ, ओपननेस मिला।
एंड यू आर अ डॉक्टर नाउ।
आई एम डॉक्टर नाउ। डॉक्टर तो है, लेकिन आई बिकेम व्हाट आई वांट। मोर इम्पॉर्टेंट देन डॉक्टर है कि डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर ही सक्सेसफुल नहीं होते। मेरे ख्याल से जो व्यक्ति दूसरे प्रोफेशन में जाता है वो भी उतना ही टैलेंटेड है, लेकिन वो अपने पैशन के साथ, बच्चे का पैशन, बच्चे की इच्छा, बच्चे की विलिंगनेस, उसको समझते हुए आप उसे प्रोत्साहन देंगे ना, तो आपका मन भी कूल रहेगा और बच्चे का मन भी कूल
जी। दीदी, अगर हम बात करें बच्चों की, खास करके यूथ की, उनके लिए सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि वो डिसाइड करें कि वो किस एरिया में अपनी ज़िंदगी आगे बिताएंगे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद डिसाइड नहीं कर पाते। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिक हो गई है कि बच्चे फोकस क्रिएट नहीं कर पाते कि किस डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ना है। ऐसे में आप इतने सारे यूथ के साथ डील कर चुकी हैं, अगर आप हमें सजेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा।
देखिए, ऐसा है, बहुत से आजकल प्रोफेशंस आ गए हैं
जी।
मैं कई बार जब छोटी थी तो यही सोचती थी कि कैसी होगी दुनिया यदि सारे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक दुनिया में हर प्रकार के अपने अपने प्रोफेशंस हैं, और आज के ज़माने में तो इतने प्रोफेशंस, अर्ली प्रोफेशंस आ गए हैं कि बच्चे सिंगर्स बन जाते हैं, डांसर्स बन जाते हैं, और भी बहुत सारी कलाएं हैं जो आप विकसित कर सकते हैं। मेरे पास भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग आते हैं, जैसे हमारा क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है वेयर एंड वी हैव एडवर्टाइजिंग फ्रेटर्निटी के बहुत से लोग, तो कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम ग्रेट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजरियल स्किल्स हैं उनके अंदर, विच इज़ गुड। बट समटाइम्स व्हेन वी वर्क विद देम, हमको लगता है कि इस व्यक्ति को यदि हम इस डोमेन में और ग्रूम करें तो ये और बेहतर परफॉर्म करेगा।
ओके
तो अगर हम उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं, सजेशंस देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये स्किल सेट बहुत अच्छा है और इस स्किल सेट को अगर तुम कार्य में लगाते हो तो तुम और अच्छा कर सकते हो, एंड दे लव टू ट्राई इट।
करेक्ट,
बिकॉज यंगस्टर्स को अगर आप गाइड करें तो दे फील वेरी हैप्पी रादर देन इम्पोजिंग ऑन देम कि तुम्हें यही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जब आप उनको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाते हैं और उनके जो स्किल सेट्स हैं उसको मैप करना शुरू करते हैं और उसके साथ जब रिजल्ट्स आते हैं, दे फील वेरी हैप्पी और वो एक्सेप्ट करते हैं कि यस, अगर मैं प्रोबेबली डिज़ाइनर ना बन करके इफ़ आई कम टूवर्ड्स मोर ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग या आई एम अ ग्रेट राइटर, तो आप उन स्किल सेट्स को जब आप बढ़ावा देते हो, दे परफॉर्म रियली वेल। एंड बच्चों में ये ओपननेस होती है, यूथ्स में कहें, बच्चों में, आई थिंक हर एज ग्रुप में ये ओपननेस है। चाहे आप ओल्डर पीपल को भी देख लीजिए, उनको जब उनको लगता है कि नहीं हम अब जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, आप उनको ही बढ़ावा दीजिए कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप सब्जी काट सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। आई एम टेलिंग यू पीपल लव टू हियर दैट। हु डजंट लाइक कि उसकी प्रेज हो और प्रेज के साथ आप थपथपाते हो उनको काम करवाएं।
इसको आप इस तरह लेना कि अगर हम मछली का और एक पक्षी का कंपैरिजन करें और मछली को पक्षी से इस तरह कंपेयर करें कि पेड़ पे कौन अच्छी तरह चढ़ेगा, तो ये ऐप नहीं है।
बिल्कुल,
उसका फंक्शन अलग है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है। तो टू पीपल एंड टू इंडिविजुअल्स आर अनकंपेरेबल। दिस कंपेरिजन इज मेजर कॉज है हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में तनाव का, और दूसरा हीन भावना आने का। जो कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी किस से? वी आर इन्फीरियर फ्रॉम होम, फ्रॉम समबडी होम विद होम आई कैन नॉट बी कम्पेयर, जिसके साथ मेरा कंपेरिजन हो नहीं सकता, पर बार बार मुझे उसके साथ कंपेयर किया जाता है तो फिर मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है।
माना घर में ही दो बच्चे हैं
जी,
आप एक डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, या दूसरा सिंगर है, या कुछ भी म्यूजिशियन है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। बच्चे की अपनी प्रतिभा है, कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, मान लीजिए वो सिंगर ही बहुत बढ़िया आला दर्जे का सिंगर बन जाए, तो यू कैन नॉट कंपेयर टू पर्सनैलिटीज, एवरी वन इज़ यूनिक। एंड आई थिंक इस चीज़ में हमें ओपन होना भी चाहिए
जी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। कई बार ऐसा होता है जैसे CA या फिर CS स्पेसिफिकली, ये जो एग्ज़ाम्स है काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, इनके लिए कुछ बच्चे कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी क्लियर आउट नहीं कर पाते। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद भी वो उससे क्लियर नहीं हो पा रहे।
बड़ा दुविधापूर्ण सवाल है
जी।
कि एक तरफ बच्चा कहता है कि मुझे यही बनना है, एफर्ट दे रहा है लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहा
जी।
इस सिचुएशन को हमें क्रिटिकली दो एंगल से समझना चाहिए
जी।
पहली चीज़ कि क्या बच्चे को हम फोर्सफुली तो वो प्रोफेशन में नहीं डाल रहे हैं, क्या उसका रियली में इस चीज़ के अंदर पैशन है, क्या वो इसके और पैशन है तो क्या उसके अंदर इतने लेवल की कैपेबिलिटी भी है उसको करने की, और अगर है तो इसका मतलब अगर वो सक्सेस फिर भी नहीं अचीव कर पा रहा तो कहीं ना कहीं उसको री अप्रोच करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ज़रूर है लेकिन उसका अप्रोच का तरीका बदलना चाहिए। तो अगर हम समझते हैं बच्चा कर सकता है या स्टूडेंट समझता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो जो तरीका वो सक्सेस के लिए यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोबेबली पढ़ने का तरीका अलग है, प्रोबेबली उसको ग्रैस्प करने का तरीका ठीक नहीं है, या एग्ज़ाम को क्लिक करना, क्लियर करना, उसके लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का आर्ट आना चाहिए, कुछ अलग प्रकार के लोगों से हमें डिस्कशन करना चाहिए जिन लोगों ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है कि क्या मेरा ये तरीका ठीक है या नहीं। और आप देखेंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं MBBS के एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कर रहा था, मैं हमेशा 12th 11th के अंदर हमेशा टॉपर रहा, बहुत अच्छे नंबर आते थे, 90+ गोल्ड मेडल मिलता था, लेकिन क्या हुआ कि सडनली मुझे कहा गया कि भाई जब मैं MBBS कर रहा हूँ कि आप इन टीचर्स से थोड़ी गाइडेंस लीजिए एग्जाम को क्लियर करने की। तो मैंने कहा नहीं, मैं शायद अपने कैपेबिलिटी पर कर लूँगा, पर मुझे कहा कि एक बारी गाइडेंस लेने में कोई हार्म नहीं है। तो मैंने उनको उनसे गाइडेंस मैंने पर्टिकुलरली लिया ओनली फॉर 15 days 1 month। मैंने देखा कि नॉलेज वही थी, ज्ञान वही था जो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसको एग्जाम में करने के लिए फॉर्मूला बेस्ड और टेक्निकल जो उन्होंने स्किल्स मुझे बताए उससे मुझे एग्जाम में सिग्निफिकेंटली हेल्प हुई,
क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है।
एक्सपीरियंस था।
करेक्ट।
तो टैलेंट है ये मत सोचिए, अगर आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन लीजिए। अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन लेते हुए भी और कुछ और प्रॉब्लम आपको लगती है कि नहीं मेरे से हो रहा है, देन यू लुक फॉर एन प्लान बी। आपकी लाइफ में प्लान बी हमेशा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति उसको क्लियर नहीं कर सकता। आजकल की प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अभी कुछ महीने पहले ही मेरे को मुंबई आने का अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ पे जो यंग क्रिकेटर्स, बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उनको मैं एड्रेस कर रहा था। और उन्होंने जो इन्वाइट किया था वो इशू ये था कि हर कोई बच्चा आज सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, बैट उठाकर बॉल उठाकर वो आगे चलते हैं, हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। बट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इज इट पॉसिबल कि सारे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं वो इंडिया की टीम 11 में आ जाए? वो फिजिबल नहीं होता। तो इसलिए उनको ये मोटिवेट करना कि एक प्लान बी भी उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर पढ़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और उसमें कुछ बच्चों ने अपनी पढ़ाई में भी एक्सेल किया, इंजीनियरिंग की डिग्री भी उन्होंने ली और साथ में उन्हें बाहर USA के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, उन बच्चों का सम्मान था। तो हुआ ये कि उन्होंने क्रिकेट पे भी फोकस बना के रखा, उसके लिए भी वो एक्सेल करे सिग्निफिकेंट अमाउंट तक, लेकिन एक प्लान भी उनकी जिंदगी में ताकि असफलता उनको निराश ना करे वो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहे।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बात करें प्रोफेशन की, प्रोफेशन और पैशन ये दो अलग बातें हैं, अगर हम पैशन को साथ रख के प्रोफेशनल लाइफ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें गोल सेट करना ईजी हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक।
ऑल्सो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है।
अच्छा,
मैं इसमें आपको अपना एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी कि कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की फैमिली, बड़ा भाई भी डॉक्टर, तो हम भी यही सोचते थे कि और कोई प्रोफेशन लाइफ में होता ही नहीं है, हमें भी डॉक्टर ही बनना है। तो हमने भी ट्राई किया, आई कुड नॉट क्लियर दैट एग्जाम।
ओके,
सो देन अगेन एक परसिस्टेंस थी कि नहीं हमें यही करना है, यही करना है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या यही चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ, एंड आंसर कहीं ना कहीं निकला कि शायद मैं मेडिकल नहीं कर सकती और मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट भी इतना नहीं था। आई वॉज मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, इवन सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी। तो जब मैंने लॉजिकल ब्रेन से सोचा, समझा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को मापदंड से अंडरस्टैंड किया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं अपने स्किल सेट्स को मोर क्रिएटिव वे में यूज़ करूँ तो आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन। एंड फिर मैंने अपनी फील्ड को थोड़ा सा चेंज किया, मोल्ड किया, MBA किया, अदर प्रोफेशनल करियर्स में गई, एंड आई कुड डू रियली वेल। तो मैं समझती हूँ कि हट होना कि हमें यही करना है, नहीं, कहीं ना कहीं समझना चाहिए, हर एक बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना कैलिबर होता है और कहाँ मेरा रुझान है। इसमें मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो शायद मेरी माँ ने बहुत सुंदर कही थी कि बेटा जो भी तुम्हें ज़िंदगी में करना है ना, डू इट विद पैशन। कि रात को भी अगर कोई तुम्हें उठा करके वो कार्य करने के लिए कहे तो यू रियली इन्जॉय डूइंग दैट रादर देन यू फाइंड इट एज अ पेन, एंड दैट्स वॉट आई डिड। मुझे बहुत मज़ा आता है रनिंग एन एडवर्टाइजिंग कंपनी, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर बिगर कॉर्पोरेट्स, वी रियली डू इन्जॉय, क्योंकि क्रिएटिव है, फन है, उस फन को हम कैसे सॉल्यूशंस में ढाल देते हैं विच वर्क्स वेल फॉर कंपनीज और लोगों के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
इट्स लाइक दैट ओनली, क्योंकि आप देखिए ना, अगर मैं ऑपरेट करता हूँ पेशेंट्स को तो रात को 2 बजे भी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आती है, तो सेविंग लाइफ इज माई जॉय। तो कई बार ये आना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर रात को 2 बजे कॉल आई, फिर वापस गए, फिर 6 बजे मॉर्निंग के अंदर आई। वी यू इन्जॉय बिकॉज आपका पैशन है उसके अंदर, यू इन्जॉय डूइंग दैट। तो हम सब पेरेंट्स भी और बच्चे भी अगर ये समझें कि उनका दिल और मन दोनों किस तरफ जाते हैं, व्हाट इज इट दैट यू एंजॉय डूइंग, तो आपको ये जो ग्रेडिंग है, कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ के अंदर, जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है प्रोफेशनल, वो आ गया, वो खत्म हो जाएगा। एवरीबॉडी विल बी लिविंग एंड एंजॉयिंग, जो आप कार्य कर रहे हैं उसको आप जॉय के साथ करेंगे, उसको आप खुशी के साथ करेंगे, और फिर आपकी जो जिंदगी है बड़ी आसान, बड़ी कंफर्टेबल बन जाती है।
इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने रियलाइज करी है
जी,
कि कई बार अक्सर होता है कि घर में ये कार्य लड़कियों का है, ये कार्य लड़कों का है। इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमारा वो कार्य का ग्रेडेशन खत्म हो जाता है कि खाना बनाना है तो सिर्फ लड़कियों का काम है, या ये काम करना है तो ये सिर्फ
लड़कों
का काम है। देन एवरीबडी स्टार्ट्स इंजॉइंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैमिली के अंदर भी। अब जैसे हम आते हैं लेट और हम देखते हैं कि हमारी मम्मी काम कर रही हैं, दो शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, तो हम सभी जाकर के मदद करते हैं, सब हेल्प करते हैं, सब कुक करते हैं, सब रात को इंजॉय करते हैं। तो ये कि ये इसका काम है, ये उसका काम है, नहीं, इट बिकम्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, टीम वर्क हो जाता है,
नॉट ओनली इन प्रोफेशन बट
इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो,
सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और मैं समझता हूं ये सिंपलीफाई करता
है। करेक्ट डॉक्टर मोहित, ऐसा कहा जाता है कि पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट काउंसलर्स, ये बात किस हद तक लागू होती है, क्योंकि कुछ बच्चे लगातार फेलियर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, ऐसे में उससे डाइवर्ट करके अगर हम दूसरा प्रोफेशन एक बच्चे को दे रहे हैं तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होता है?
ये बात तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि बच्चों का मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, उनका अपब्रिंगिंग मदर के वूम से लेके जब तक वो स्कूल जाना चालू करते हैं, उनका मैक्सिमम कॉन्टैक्ट माता और पिता के साथ होता है
जी।
प्रोबेबली माता के साथ कई बार ज़्यादा, कई बार पिता के साथ ज़्यादा, कई बार दोनों के साथ बैलेंस होता है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो नींव लगाते हैं। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बीज जो है उसको शुरू के अंदर कैसा खाना दिया जाए, उसको किस प्रकार का पानी दिया जाए, किस प्रकार की खाद डाली जाए, वो उसका बेसिक जो है वो उसका फॉर्मेट डिसाइड करता है, वो उसका फ्यूचर डिसाइड करता है
जी।
तो इसीलिए अगर बच्चों को शुरू से ही काउंसलिंग करके, अर्थात काउंसलिंग मतलब ये नहीं कि उनको शिक्षाएं दे दी जाए, 1, 2, 3, 4 पॉइंट एजेंडा दिया जाए, नहीं, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट डेवलप करके उनकी फीलिंग्स को समझा जाए, उनको प्रॉपर वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए कि इन वैल्यूज़ को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर उनको एक कसौटी दी जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ये अचीव करेंगे, अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हमारे लिए ये रास्ता खुला है, तो उससे उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उनकी एनहांस होती है। एनफोर्स करना डिसीजन इज नॉट द राइट काउंसलिंग। काउंसलर कभी भी अपने डिसीजन को किसी के ऊपर एनफोर्स नहीं करता। काउंसलर अर्थात जो उनकी मेंटल मेकअप को, उनकी भावनाओं को हम समझें, उनकी भावनाओं को समझ के उनको हम रास्ता दिखाएं कि इस तरीके से हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये कब हो सकता है? जब आप उनको बॉस या गुरु की तरह टीच नहीं करें, आप उनको दोस्त की तरह अपना बना कर रखें। तो हमारी लाइफ में भी हमने तो यही देखा कि हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमको किसी चीज़ से रिफ्रेन नहीं किया। हम आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात सुनाते हैं कि जब शुरू में 90s and 80s की बात है कि घर में टेलीविजन और केबल का आगमन हुआ था
जी।
तो केबल जनरली एक बड़ी नेगेटिव एंटिटी मानी जाती थी कि उसके अंदर भाई बच्चे क्या देखेंगे, पिक्चर ही देखते रहेंगे पूरे दिन। तो हमारे घर में भी ये डिस्कशन हुआ, हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो हमारे फादर ने यही कहा कि नहीं देखो, जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं वो लगाना हमारे घर में, हम इन बच्चों को देना फैसिलिटीज़, वो हमारा फ़र्ज है
जी।
लेकिन इनको साथ में ये भी शिक्षा देना कि क्या इनको देखना है, क्या नहीं देखना है, ये कैपेबिलिटी भी हमको इनके अंदर भरनी है। तो फैसिलिटीज पूरी देनी है हमें उन्हें, लेकिन वो वैल्यू बेस्ड संस्कार भी उनको देना है, वो सिस्टम भी हमको उनके अंदर इस प्रकार का डेवलप करना है कि उनके अंदर राइट डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी हो, ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पेरेंट्स आर डेफिनेटली एंड 110% बेस्ट काउंसलर्स। उसके बाद बच्चे का कॉन्टैक्ट अपने टीचर्स के साथ होता है, उनका रोल भी उनके शेपिंग ऑफ करियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबली ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट।
बच्चों की ग्रूमिंग में या फिर उनके करियर को डिसाइड करने में क्या टीचर्स का भी उतना ही बड़ा रोल होता है जितना कि पेरेंट्स का होता है?
नेचुरली क्यों नहीं होगा। आप देखिए, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ कि जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन साथ में हम लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट बन रहे हैं उनको हम टीच भी करते हैं, उनको हम ट्रेन भी करते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम कैलिबर एंड सेम कैपेबिलिटी, उनके अंदर सेम कैपेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर हम उनको बोले कि ये स्टूडेंट नंबर वन है, इसको मैं ज़्यादा काम दूंगा या इसको मैं ज़्यादा अच्छी तरह एजुकेट करूंगा, दैट इज़ नॉट अ गुड टीचर। टीचर वो अच्छा है जो देख रहा है कि ये बच्चा कम है, लेकिन हमारा शब्द यही होता है कि देखो ये जो कार्य करते हैं ना, ये कोई ऊपर से स्पेशल फरिश्ते नहीं आकर करते। पीपल लाइक यू ओनली हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस पर्टिकुलर जॉब, कम ऑन आई विल टीच यू। तो उनको गाइड अगर हम खड़े होके, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके आत्मविश्वास को हम रिस्टोर कर रहे हैं। वी आर मेकिंग देम मोर, यू नो, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर है उसको हम गेन कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी को हम लोग जागृत कर रहे हैं, उनके मन के अंदर हम लोग ऊर्जा भर रहे हैं। इसी प्रकार स्कूल के अंदर भी जब वीक स्टूडेंट होता है तो वीक को वीक कहना तो कितना आसान काम है, है ना, तुम तो हो ही खराब, सारी दुनिया तुम्हारे को ऐसे करती है, तुम सारे सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो तुम्हारा कार्य नहीं हो सकता
जी।
मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये बात सुनने लायक है, लाइफ चेंजिंग है
जी।
कि आइंस्टाइन एक बारी अपने घर पर आए तो उनको टीचर ने एक पर्ची देकर भेजा। उस पर्ची देकर उस आइंस्टाइन को कहा उन्होंने कि अपनी माँ को जाके देना और कहना कि तुम्हें कल से स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने आकर अपनी माँ को दी पर्ची और कहा कि बताइए इस पे क्या लिखा है। तो माँ ने उसको खोला और पर्ची को पढ़कर कहा कि तुम्हारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसको पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है, इसको तुम घर में ही रहकर एजुकेट करो, ये बहुत बड़ा जीनियस है। तो आइंस्टाइन को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसके बाद इतिहास था कि एज अ स्टूडेंट लाइफ उन्होंने क्या क्या इस दुनिया में अचीव किया। पर जब माँ का अंत समय था, उनकी माँ का देहांत हुआ, तो वो जो पर्ची थी बहुत प्रिजर्व करके उन्होंने एक डब्बे के अंदर रखी हुई थी। उनके देहांत के बाद उन्होंने उस पर्ची को खोला और उस खोल कर उन्होंने खुद उस पर्ची को पढ़ा, तो उस पर्ची पर एक्चुअली टीचर ने पता है क्या लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मूर्ख है, इस बच्चे को पढ़ाना हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, इसको तुम केवल अपने घर में रख के अपने पास ही जो पढ़ाना चाहो पढ़ाओ, इसको कल से स्कूल भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर उनकी माँ अपने बच्चे को ये बात बताती तो क्या आइंस्टाइन आइंस्टाइन बन पाता? वो नहीं बन पाता। तो ये पेरेंट्स ने और टीचर्स ने राइट मोमेंट पे क्या हम बच्चे को फीड करना चाहें, ये हमारे ऊपर है। केवल वर्ड्स का ही फर्क है, उसके अंदर आत्मसम्मान भरने का ही फर्क है कि वो क्या से क्या अचीव कर सकता है। कैपेबिलिटी हर एक के अंदर होती
है। ओह ब्यूटीफुल, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के करियर को या तो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए या फिर नेगेटिविटी की तरफ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, बच्चे वो एक फूल की तरह होते हैं, हम उन्हें जैसा शेप करेंगे वो वैसा ही बन जाएंगे। जिंदगी में अगर आपको आपके बच्चों की आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने अंदर में ये ऊर्जा अपनाइए कि उन्हें मोटिवेट करते रहें सदा। मोटिवेशन से आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे हमेशा आगे की ओर ही बढ़ेंगे और फिर उनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।